पहले उपमागत कुछ अप्रस्तुतों के उदाहरण देखिए। एक, लह लहाति तन तरुणई लचि लगी लौ लफि जाय। दो, कांटे सी कसकत हिये वह कटीली भौ। तीन, वाही तन ठहरात यह किबल नुमा लौ दीठ। चार, सटपटात सी शशिमुखी मुख घूंघट पर ढाँक पावक झर सी झमक कै गई झरोखे झाँक। पाँच, नीची यय नीची निपट डीठ कुही लौ दौर। छ, कौहर सी एड़िन की लाली निरख सुभाय। सात, सहज सेत पचतोरिया पहिरे अति छब होती जल चादर के दीपलों जगमगाति तन ज्योति। आठ, जाके तन की छाह ठिक जोन छाह सी होती। नौ, हरि छबि जल जब ते परे तब ते छिन बिछुरैन भरत ढरत बूढ़त तिरत रहट घरी लौ नैन। दस, बाल छपीली तियन मैं बैठी आप छिपाय अगर अरगट ही फानूस सी परगट परय लखाय। ग्यारह, निस्दिन डाढ़ी सी फिरती बाढ़ी गाढ़ी पीर। बारह, नार सलोनी सांवरी नागिन लौ डस जाय। तेरह, नेह दबावत नींद लौ निरख निशासी नारी। उपर्युक्त सभी अप्रस्तुतों में से अधिकांश नए हैं। इनके नएपन के कारण कोई चाहे तो इन्हें ताजा कह सकता है, पर ताजगी अंतःकरण की विशेषता है, वैचित्र की नहीं। इधर उधर की जुटाई हुई अद्भुत वस्तुओं में एक अजनबीपन स्ट्रेंजनेस पाया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि वे ताजगी पूर्ण भी हों। यहाँ पर कवि की दृष्टि अजनबीपन पर ही अधिक टिकी हुई है। तारुण्य भार से दूनी होती हुई नायिका और लग्गी के लफ जाने में जो धर्म साम्य है वह स्थूल ही कहा जाएगा, फिर भी इससे एक ऐन्द्रिय बिंब उपस्थापित हो जाता है। दूसरे उदाहरण का अप्रस्तुत कोई संवेदनात्मक बिंब नहीं निर्मित कर पाता। 3, 5, 11, 12, 13 के अप्रस्तुत राग बोधात्मक क्षमता से सर्वथा रिक्त हैं। किबल नुमा और कुही आँख के जिस पक्ष का सादृश्य प्रस्तुत करते हैं वह वर्णनात्मक है, काव्यात्मक नहीं। गाने बजाने वाला व्यवसायी कुष्ठ में दाढ़ी जो इतस्ततः घूमता फिरता है वह गाढ़ी पीर में व्याकुल नायिका का ऐन्द्रिक चित्र कैसे उभार सकता है? अप्रस्तुत केवल उसका घूमना रूपायित कर पाता है, गाढ़ी पीर को चित्रित करने की क्षमता उसमें कहाँ। यहाँ पर तो प्रस्तुत और अप्रस्तुत का कोई मानसिक संबंध स्थापन भी नहीं हो पाता। एक ही दोहे में कई अलंकारों के निर्वाह की स्पृहा अप्रस्तुतों की बिंब विधायनी शक्ति को चौपट कर देती है। कहाँ नींद और कहाँ स्नेह, कहाँ निशा, कहाँ नारी, इसमें तो कोई सादृश्य ही नहीं है। चौथे, सातवें और नवें उदाहरणों को अप्रस्तुत अपनी रागबोधात्मक क्षमता के कारण काव्योपम बिंब निर्मित करते हैं। झरोखे से नायिका का झांक कर झट चला जाना अग्नि की लपट सा मालूम पड़ा। इस अप्रस्तुत में रूप, धर्म और प्रभाव तीनों का साम्य है, इसलिए यह अत्यधिक उत्कृष्ट चित्र बन पड़ा है। पीताभ नायिका के रूप लावण्य की एक झलक को उभारने में पावक झर आत्यंतिक रूप से समर्थ है। आग की लपट का धर्म है पार्श्ववर्ती व्यक्ति को परितप्त कर देना। नायिका का झांकना नायक को विरह व्यथा से पूर्ण बना देता है। यह अप्रस्तुत नायिका की रूप चेतना को पाठकों के मन में अच्छी तरह उभार ही नहीं देता, बल्कि उन्हें भी रागानुभूत कर देता है। पीतवर्णी नायिका को पावक झर का साम्य प्रस्तुत करते समय कवि रस समाहित चित्त कहा जा सकता है। जल चादर का दीप भी श्वेत साड़ी के भीतर झांकती हुई नायिका की नई अंग ज्योति की रागात्मक चेतना अच्छी तरह चित्रित करता है। रहट घड़ी अपने पूर्ण संदर्भ में समर्थ अप्रस्तुत है। रूपकगत अप्रस्तुतों के चुनाव और संदर्भण में बिहारी सबसे अधिक समर्थ सिद्ध हुए हैं। एक नव नागरितन मूलक लही जोबन आमिल जौर घटी बढ़ी ते बढ़ी घटी रकम करी और की और। दो कौड़ा आंसू बूंद कसी साकर बरुनी सजल कीने बदन निमूंद दृग मलंग डारे रहत। तीन वेई गड़ी गाड़ें परी उपट्यो हार हियन आन्यो मोरी मतंग मन मारो मुरेरन मैन। चार मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड़ गुरु इक नारी लही संग रसमय किए लोचन जगत। ये समस्त उदाहरण पांडित्य प्रदर्शन के द्योतक हैं। इनके अप्रस्तुत इतने अशक्त हैं कि इन पर टिप्पणी व्यर्थ है। इस अशक्तता की व्याख्या आगे की जाएगी। उत्प्रेक्षागत अप्रस्तुत कवि कल्पित होने के कारण अधिक चमत्कारिक होते हैं, पर उनकी सिद्धता इसी में है कि वे बराबर राग बोधात्मक हों। यह अलंकार रीत कवियों का बड़ा ही लाडला अलंकार रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से नायक नायिका के रूप बोध की संभावना में उन्हें पर्याप्त छूट मिल जाती है। इसका अप्रस्तुत लोक सिद्ध होता है। लोक सिद्ध होने पर वह उपमा के अंतर्गत आ जाएगा। लोक असिद्ध उपमान का चमत्कारिक होना स्वाभाविक है, पर केवल लोक असिद्ध होने के कारण कोई अप्रस्तुत चमत्कार हो जाए यह आवश्यक नहीं है। उल्टे उसे पहली परख हो जाने का खतरा बढ़ जाता है। पहले बिहारी की इस तरह की उत्प्रेक्षाएँ देखिए। एक भाल लाल बेंदी छये छुटे बार छवि देत गहव राहु अति आहु करी मनु शशि सूर समेत। दो नीको लसत लीलाट पर टीको जरित जराय छवि ही बढ़ावत रवि मनो शशि मंडल में आय। तीन तिय मुख लख हीरा जरी बेंदी बढ़े विनोद सुत स्नेह मानव लियो विधु पूरन बुध गोद। पहले दोहे में राहु का सूर्य और चंद्रमा को एक साथ ही ग्रस्त लेना लोक में असिद्ध है, पर इससे नायिका के भाल बिंदी और उन्मुक्त केश राशि का कोई बिंब नहीं उपस्थित हो पाता। यही बात दूसरे और तीसरे दोहे की उत्प्रेक्षाओं के संबंध में भी कही जा सकती है। ज्योतिष के शास्त्रीय अप्रस्तुत सामान्य जीवन से असंपृक्त होने के कारण पहेली बन जाते हैं, किंतु बिहारी की बहुत सी उत्प्रेक्षाएँ ऐसी भी हैं जो काव्य के अत्यंत मनोरम चित्र प्रस्तुत करती हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। एक पग पग मग अगमन परत चरण अरुण दुति झूल ठौर ठौर लखियत उठे दुपहरिया से फूल। दो जरी कोर गोरे बदन बढ़ी खरी छवि देख लसति मनव बिजुरी किए शारद शशि परिवेख। तीन सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मन शैल पर आतप परव प्रभात। दुपहरिया के फूल का फूलना लोक सिद्ध है, पर ठौर ठौर पर उसका फूल उठना लोक असिद्ध माना जा सकता है। यहाँ पर जो धर्म साम्य प्रस्तुत किया गया है वह पाठकों की रागोत्तेजना में पर्याप्त सहायक सिद्ध होता है। बिजली अप्रस्तुत है। यह कवि कल्पित अप्रस्तुत जरीदार साड़ी में शोभित नायिका की मुख शोभा को इस ढंग से अंकित करता है कि उसके पाठकों की रूप चेतना तीव्रतर हो उठती है।